من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر ایدان محترم ایک دو منٹ لیں گے میں شکریہ بھی اس لیے نہیں ادا کر رہا ابھی میں شکریہ ادا کروں کہ الیکٹرک ابھی لائٹ چلی جائے اس لیے ذرا چلنے دیں دیکھیں معاملہ کہاں تک جاتا ہے صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر وہ والا حساب نہ ہو جو ہمارا وزیر پتہ نہیں کیا ہے توانائی ہے کیا ہے بجلی تیل ویل کا وزیر ہے یہ تو سب کی تیل نکلے ہوئے ہیں لیکن چلیں ان کو وزیر ہے کر رہا تھا پریس کانفرنس ابھی دو تین دن پہلے کی تو بات ہے اور بڑے تیر مار رہا تھا بڑے جیسے ان کے ہانکتے نہ ایکتے نا ہمارے وزیروں کا ماشاء اللہ ایک کام یہ بھی ہے کہ حکمرانوں کے سارے گناہوں کا بوجھ ہی اٹھاتے ہیں ابھی بتائیں گے کیسے کیوں میں نے یہ جملہ کہا ابھی بتاؤں گا آپ کو کہ وزیر کہتے کسے ہیں بتائیں گے آپ کو بوجھ اٹھانے والا لیکن چلیے وہ آگے ابھی اتنا بتا دیں کر رہا تھا تقریر اور بجلی کا ہم نے لوڈ شیڈنگ کم کر دی آدھی گدھی ایک دم لائٹ گئی اور جو قہقہے لگے وہاں اس کا منہ دیکھنے والا تھا پہلی پھٹکار پڑی ہوئی تھی اور پھٹکار پڑ گئی اس کے چہرے پہ اور سلوار ایک سلوار بھیجیے محمد علی محمد پر اور دوسری بات یہ کہ ہمارے برادر ابرار صاحب نے جو کچھ کہا وہ اس کے ذمہ دار ہے محبت ہوتی ہے لوگوں کی ایک دوسرے سے ان کی محبت ہے ہم سے تو نہیں اتنے بڑے بڑے جملے کہہ دیے من آنم کے بندانم کچھ نہیں لیکن ہاں بس اتنا سیکھا ہے کہ بے خوف جو کہنا ہے کہہ دو کہہ رہے ہیں جو کہہ ڈالو آج سے نہیں کہہ رہے جب سے الحمدللہ بولنا سیکھا ہے جب سے بول رہے ہیں خدا کا شکر ہے اس کے لیے بہت کچھ راستے طے کرنا پڑے کٹھن راستے طے کرنے پڑے بڑے سخت راہوں سے گزرے سب کچھ گزرا لیکن الحمدللہ خدا کا شکر ہے اور یہی دعا کرتا ہوں دیکھیے مستقبل کا تو نہیں معلوم ہے نا انسان کو اپنے کسی کا بھی نہیں معلوم کسی کو بھی نہیں معلوم دعا یہ کرتا ہوں آپ سے بھی کہتا دعا کریں پروردگار آخری سانس تک ایسے ہی رکھے ہے نا جس کو کہتے ہیں نا کہ خاتمہ بالخیر ہمیشہ اس کی دعا مانگا کرو یہ اچھا جو وقت گزرا ہے نا یہ ہے ٹھیک ہے لیکن ایک خاتمہ بالخیر کی دعا مانگا کرو کہ پروردگار انجام بخیر ہو خاتمہ بخیر ہو ایمان کی حالت میں ہو ضمیر پہ کوئی بوجھ نہ ہو ضمیر پہ کوئی بوجھ وہ آنے والی تو آئی جاتی ہے نا ایک بار آتی ہے ہم نے تو پتہ نہیں کتنی بار ایسے موقع دیکھے کہ یہاں سے گزر گئی موت تو یقین پکا ہو گیا کہ بھائی ہوتی تو آ جاتی نہیں تھی تو پاس سے نکل گئی بالکل پاس سے نکل کے گئی تو ختم ہو گئی بات تو جب آنی ہے پھر کوئی روک نہیں سکتا کوئی بھی نہیں روک سکتا پروردگار تمام مومنین کو اپنی حفاظت میں رکھے امن و امان سے رہیں امام زمانہ آپ سب کے حامی و ناصر ہو تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے ایک بلند آواز ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد ایک منٹ اور دے دیجیے بہت ضروری بات کرنا تھی آج سے جانتے نا کہ مرکزی جلوسوں کا آغاز ہو گیا پورے شہر میں تو اپنے جوان تمام جوانوں کو یہاں نہیں یہ آواز جا رہی ہے سب جگہ جا رہی ہے پورے کراچی تک پہنچ جاتی ہے بلکہ کراچی سے باہر بھی یہ ہمارے دوست پہنچا دیتے ہیں ساری دنیا میں بس ایک بات کا خیال رکھیں نظم و ضبط کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے بڑے سے بڑا سانحہ ہو جائے ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر ہو جائے اعصاب کو قابو رکھنا نا بھائی اب تو ہماری ٹریننگ ہو گئی نا اتنے بڑے بڑے سانحات ہم نے دیکھ لیے اعصاب کو تو کنٹرول رکھیں اعصاب قابو رکھیں کیا ہو گیا ابھی ہو گیا نا دیکھی جائے گی کھڑے ہیں میدان میں جا تھوڑی رہے میدان چھوڑ کے پہلے بھی کھڑے تھے اب بھی کھڑے لیکن اعصاب قابو میں رکھیں ایک بات نظم و ضبط برقرار رکھیں ڈسپلن ایسا نہ ہو کہ ایسی لگے قوم ایسی ہے جس کا کوئی رکھوالا ہی نہیں ہے بھیڑوں کا ریوڑ ہے نہیں بھائی ایسا نہیں نظم و ضبط کے ساتھ آپ کے اسکاؤٹس جیسے یہاں کھڑے ہیں ان جب اسکاؤٹس کھڑے نا جگہ جگہ تمام اسکاؤٹ فرض انجام دے رہے ان کو معمولی نہ سمجھیں آپ ہمارے بعض لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتے ہیں اللہ ان کو اور بہت بڑا بنائے ٹھیک ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہوتا कि अगर आप मजलिस में आ रहे हैं तो आपकी जहां मर्जी आप गाड़ी पार कर दें, जहां मर्जी खड़ी कर दें, क्योंकि आप बहुत बड़े आदमी, कोई बड़ा आदमी नहीं है, फर्श अदा पे सब एक जैसे हैं। समझ गए आप? ये जो बच्चा वर्दी में छोटा सा भी खड़ा है ना, अगर 12 साल भी अगर उसकी उम्र है, 11 साल भी उसकी उम्र है, लेकिन अगर वो स्काउट्स की वर्दी में खड़ा है और वो आपसे कह रहा है कि गाड़ियां नहीं खड़े, तो आप पर लाजिम है उसकी बात को मानना। आपको बेशक थोड़ी सी तकलीफ हो जाए, वो भी हमारे बच्चे हैं ना, उनके बाप आप कौन है, हम ही लोग हैं ना, आप ही सब लोग हैं ना, उन्हीं के आप ही के बच्चे हैं, किसके लिए खड़े हैं, आपके लिए खड़े हैं ना, इंतजाम के लिए खड़े, लिहाजा उनसे भरपूर तावन। ट्रैफिक पुलिस के सिपाही आपके लिए खड़े हैं, किसी को इजाजत नहीं उनके साथ बदतमीजी करें। क्या मतलब है? हम आजादारी करने निकले, कोई बदमाशी करने निकले थोड़ी है, इमाम हुसैन के आजादार हैं अल्लाह के बंदो। पुलिस वाले से किसी को इजाजत नहीं बदतमीजी करे, कोई मसला होता है हम खुद निपटते हैं ना, लेकिन नहीं, इंतजामात के सिलसिले में किसी को हक नहीं है कि उन सिपाहियों से बदतमीजी करे। रेंजर्स के सिपाही आपके लिए खड़े हैं भाई, आपके लिए, किसी को हक नहीं है कि उनके साथ बदतमीजी करे। और यही नसीहत मेरी इनको भी है, वो चाहे रेंजर्स के सिपाही हों, चाहे पुलिस के सिपाही हों, चाहे ट्रैफिक के सिपाही हों, चाहे हमारे स्काउट्स के, नहीं, आप भी आजादारों के साथ अदब के साथ, आदाब के साथ, अखलाक से पेश आइए। हमारी कौम वो कौम है जो मोहब्बत का जवाब डबल मोहब्बत से देती है। आप आजमा के देख लीजिए, आप हमारे आजादारों से प्यार से बात करेंगे, आजादार आपकी राहों में बिछ जाएंगे। तो तमाम इंतजामिया को मैंने पैगाम दे दिया कि नहीं, हमारे आजादार ऐसे नहीं हैं, इनसे मोहब्बत से पेश आइए, ये डबल मोहब्बत से आपको जवाब देंगे। तो इन सब के साथ आपको ताबून करना है आशूर तक, आशूर के बाद भी जहाँ जहाँ जुलूस हैं, जुलूसों के इंतजाम के सिलसिले में कोई गड़बड़ नहीं। जवानों से भी कह रहा हूँ, एकदम जज्बाती हो जाते हैं, ये हो गया वो हो गया, और बेइज्जती समझते हैं, मुझे रोका क्यों रस्से के पास, क्या मतलब है, क्या मतलब है आपका, रोका नहीं, इंतजाम हो रहा है ना भाई, एक जुलूस जा रहा है, एक डिसिप्लिन है, एक पाबंदी है, एक नज़्म व ज़ब्त है। अगर कोई स्काउट्स खड़े हैं तो उनको वहां खड़ा किया गया है, अगर वहां पुलिस खड़ी है तो उसको खड़ा किया गया है, अगर रेंजर्स के सिपाही खड़े हैं तो उन्हें खड़ा किया गया है ना भाई। हाँ, दुआ करो कि हालात फिर वही 30 साल पहले वाले अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ जाएं, अच्छा माहौल हो जाए। बच्चों ने तो बेचारों ने देखा नहीं, अजीब बच्चे हमारे, वाकई इन्होंने कुछ नहीं देखा। हमने वो दौर देखा है कि बाजार खुला हुआ है, होटलें खुली हुई हैं, जुलूस भी चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, और मोहल्लों के जुलूस, तो दो सिपाही वो भी डंडा लिए आगे आगे चल रहे होते थे, और कुछ भी नहीं, जुलूस जा रहा है आ रहा है। ये सब दहशत गर्दों ने किया है ना बेड़ा गर्क हमारा, कितने इंतजाम, कंटेनर पंटेनर ये सब ले, कुछ नहीं होता था भाई, कहीं कुछ नहीं होता था, बड़े बैठे हैं ना, याद है ना भाई, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, खुले हुए रास्ते जाओ, जुलूस जा रहा है, आराम से जा रहा है। वो इंतजाम ही बस मीटिंग होती थी, कोई सिक्योरिटी पिक्योरिटी की मीटिंग तो होती नहीं थी। वो जनाब सारे होटल खुले हुए हैं, लोग आजादार भी जा रहे हैं चाय पीकर, बल्कि जितना उनका 6 महीने में कारोबार नहीं होता था उतना उनका जुलूसों में हो जाता था। वो अब रोते हैं कि इतनी सिक्योरिटी लग गई, हमारी जो है आमदनी बंद हो गई। तो मौला का रिस्क, मौला के सदक़े में इतना रिस्क बढ़ता है, इतना रिस्क बढ़ता है, मैंने खुद यकीन माने, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, हवा में खबर नहीं देता हूँ, मैंने खुद एक टीवी का प्रोग्राम देखा जिसमें वो तज्जिया कर रहा था और बता रहा था, उनका वो जो क्या है तिजारती जो एसोसिएशन होती है इनका, ट्रेड यूनियन जो है, ट्रेड यूनियन के सदर का बयान बता रहा था कि इतना 2 महीने में ट्रांजेक्शन पैसे की नहीं होती जिस दिन जितनी 10 दिन में होती, बता रहा है कि इतना तबर्रू, कितना पैसे का ट्रांजेक्शन, स्टॉक एक्सचेंज और सब खुश होते हैं कि पैसा पैसा आता है ना। रोता ना, मैं इकोनॉमिस्ट तो हूं नहीं, माहिर माशियात, लेकिन मैं उसकी सुन रहा था, तो अब ये जो उसकी इस्तिलाहत है वही समझे कि वो जो बता रहा था इस्तिलाहत के इतने अरब इतने अरब इतने अरब, और 9-10 जिस दिन पूरे बाजार बंद, पूरा मुल्क में कहता, उस 2 दिनों में उन 8 दिनों से भी ज्यादा। ये हुसैन का सदका है अगर कोई समझे। हम तो भाई माहिर माशियात हैं नहीं ना, हमने पढ़ी माशियात वाशियात, हम तो एक छोटा सा फार्मूला जानते हैं, एक बार 365 दिन की आज़ादारी करने दो और लंगर खोल दो, कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा तुम्हें लोगों पे। ये शिया कौम 22 करोड़ आदमियों को इतना खिलाएगी साल भर, खिलाते नहीं खिलाते, एक दिन में देखा ना लंगर, तो अगर रोज़ खुल जाएगा तो खाली शिया थोड़ी खाते, सबको खिलाते हैं, है ना। तो हम तो माशियात का ये हल जानते हैं कि मजलिस अज़ा बरपा कर दो, इज्जत से लोगों को खाना मिलेगा, यहाँ भीख नहीं मिलती ना, भीख तो नहीं दे रहा कोई किसी को, भीख कहाँ दे रहा, यहाँ तो देने वाले का सर नीचे होता है, लेने वाला फख्र से लेता है कि किसी और का माल थोड़ी ले रहा हूँ, अपने मौला का तबर्रुक ले रहा हूँ। भूख इफलास सब मिट जाएगी, तुम्हारी इज्जत से रोटी खाएंगे लोग, सर ऊंचा करके खाएंगे, क्यों? मौला का तबर्रुक है ना, फार्मूले हमसे ले लो, फिर देखो कैसा होता है, कहीं भूख नहीं रहेगी, कोई भूखा नहीं रहेगा। क्यों? जब ये शिया कौम तबर्रुक बांटती है तो नाम पूछ के नहीं बांटती, जात पूछ के नहीं बांट, जो आ जाए, अरे गैर मुस्लिम भी आएगा, ले जा मौला का तबर्रुक, जा ले जा, है ना। बहरहाल ये एक दो बातें थी आपसे नज़्म व ज़ब्त के मुतालिक। परवरदिगार सबको सलामत रखे, इंशाअल्लाह सब खैरियत से होगा। लेकिन अगर अल्लाह ने कोई इम्तिहान रखा है तकदीर में, तैयार है, पहले भी दिए थे इम्तिहान, फिर दे देंगे इम्तिहान। अब ये तो कुदरत का निज़ाम है ना, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छे इंतजाम जा रहे हैं। लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो भाई उस पर हवास बाख्ता होने की ज़रूरत थोड़ी है, हो गया तो हो गया, न मालूम कितने बड़े बड़े हादसों से हम गुजर गए, अब जो होगा खुदा ना करे उसका भी सामना कर लेंगे, देख लेंगे। मौलावारी से हमारा जब हम निकलते हैं घर से, मजलिस में आते हैं, एक हम अकेले थोड़ी होते भाई, हमारे साथ ना मालूम कौन कौन सी हस्तियां चलती हैं। यकीन है ना, मैं आपको मस्का थोड़ी लगा रहा हूँ, लफाजी थोड़ी कर रहा हूँ, मेरा यकीन है, कसम खा के कह रहा हूँ कि जब तुम खुलूस से जुलूस अज़ा में जाते हो ना, तुम्हारे ज़माने का इमाम तुम्हारे साथ चल रहा होता है, फिर और क्या चाहिए। अब क्योंकि आज क्योंकि मुझे बात भी इसी टॉपिक पे करनी है, आखिर में आपको वहीं तक लेकर आना है, तो इसलिए मैंने एक जुमला तमीज़न आपकी खिदमत पर अर्ज कर दिया। बातें अपने मौजू की तरफ, आज जो हम गुफ्तगू करेंगे वजूबे इताअत इमाम, कल हमने इस्मत पे बात की थी ना। अच्छा मसला है कि सारे एक एक मजलिस, अब 8-9 मजालिस, उनमें हम मुकदमे ही पेश कर सकते हैं ना, थोड़ा थोड़ा मैटर आपको दे सकते हैं, क्या करें, इतना जाहिर है कि इतना मवाद होता है, इतना मैटर, अब ये मवाद का लफ्ज़ भी अजीब हो गया है, उर्दू में जुमानी हो गया है, तो इसलिए मजबूरन मुझे इंग्लिश का लफ्ज़ मैटर मैंने याद कर लिया, बड़ी मुश्किल से, इंग्लिश विंग्लिश तो मुझे आती नहीं, मैटर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देता हूँ। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, तो मैटर तो बहुत है, लेकिन कोशिश करेंगे कहां तक, वजूब इताअत, ठीक है जी। इमाम का, इमाम जरूरी है, हर तबके में इमाम जरूरी है, कल हमने आपको बता दी, इमाम के बगैर गुजारा नहीं है, चाहे वो सियासी इमाम हो चाहे वो मजहबी इमाम हो। कैसे इमाम? मुल्हिदीन को भी एक रहबर चाहिए, एक पेशवा चाहिए ना, जो खुदा को नहीं मानते उनको भी खुदा को ना मानने के लिए भी एक चाहिए, जिसका वो इत्तिबा करें, जिसकी बातों में वो कान धरे, है ना, एक चाहिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं, रास्ता नहीं। मौला ने फरमा दिया ला बुद्द लिन्नास बिन अमीर, एक अमीर इंसानों के लिए होना जरूरी है। बस इसकी इताअत का वजूब कैसे आया? ठीक है इमाम है, इतने इमाम है दुनिया में, है ना, इमाम इताअत वाजिब है नहीं है। अच्छा लोगों ने तकसीम भी कर लिया कि भाई हम तो इस इमाम के मानने वाले, इसकी मानेंगे, बाकी की नहीं मानते, है ना, हमारे यहाँ फ़िक़्हे अरबा है। मैं कोई खुदा ना करे बुराई नहीं कर रहा, एक समझा रहा हूँ बात कि चार अइमा अरबा जो कहलाते हैं, उसके अलावा फिर असलाफ हैं, फिर अहले हदीस हैं, और फिर ना मालूम क्या क्या है, लेकिन ये छह तो बड़े बड़े गुरु हैं ना, गुरु असलाफ और अहले हदीस तकरीबन एक ही हैं, लेकिन ज़रा सा इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो जब हम दूसरा अशरा पढ़ते हैं तारीख पर तो उसमें बता देंगे ये फ़र्क वगैरह, लेकिन अभी जहन में रखिए फ़िक़्हे अरबा है ना, फ़िक़्हे हनफी, फ़िक़्हे शाफ़ी, फ़िक़्हे मालिकी, फ़िक़्हे हम्बली, ये चार फ़िक़े हैं, और फिर उसके बाद असलाफ और अहले हदीस। लेकिन मैंने अर्ज़ कर दिया कोई कह के आ जाए वो तो एक ही हैं, बेशक एक हैं, लेकिन इनमें फ़र्क है, इसीलिए एक असलाफ कहलाते हैं और एक अहले हदीस हैं, अकीदतन दोनों ही अहले हदीस हैं, हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई हैं, बुराई नहीं कर रहे हम किसी की, हम बता रहे हैं आपको, ऐसा है ना। तो लिहाजा अगर कोई हाथ खोल के नमाज पढ़ रहा है काबे में तो ज़रूरी नहीं समझेगा कि वो शिया है। कितने पढ़ते हैं लोग, ख़ास तौर पे शुमाली अफ्रीका के जो लोग आते हैं ना, उनकी अक्सरियत हाथ खोल के नमाज़ पढ़ती है। इसी तरह ये मुत्तहिदा अरब अमारात में इनकी बहुत बड़ी अक्सरियत है, यहाँ तक कि एक स्टेट के जो शेख वगैरह हैं वो भी मालिकी। और ये दुनिया ने उस वक्त देखा था मंज़र जब एक बहुत बड़े शेख का इंतकाल हुआ, उसकी नमाज जनाजा हुई तो सब हाथ खोले खड़े थे, अब सब परेशान, क्या शिया था? मैंने कहा नहीं भाई शिया नहीं था, ये मालिकी था। समझ में आ गया, फ़िक़्हे मालिकी में हाथ खोल के नमाज। हम यही तो अपने बिरादरान को समझाते हैं कि लड़ने झगड़ने की बात नहीं है, ये पांचों फ़िक़्हे यानी फ़िक़्हे जाफरिया समेत सब जगह ऐसे अहकाम हैं जो कॉमन हैं कि आप कहते हैं हाथ खोल, भाई यहाँ मालिकी नहीं है, दुनिया में तो है ना, हाथ खोल के नमाज़ पढ़ने वाले भी हैं, नमाज में दूसरी रकात में कुनूत पढ़ने वाले भी हैं, ये सारे मौजूद हैं, इतना लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है, हर जगह कहीं ना कहीं कोई हुक्म मिल जाता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन तयशुदा बात है ना कि जो हनफी है فقہ حنفی میں عمل کرتا ہے, باقی تین پہ عمل نہیں کرتا. ایک اصولی بات ہے, جو حنبلی ہے وہ باقی تین پہ نہیں, جو شافعی ہے وہ باقی تین پہ نہیں, جو مالکی ہے وہ باقی تین پہ نہیں. مانتے سب ہیں, یہ نہ سمجھیے گا خدا نہ کرے ایک دوسرے کے دشمن ہیں سارے, نہیں بھائی, ہم اس امام کو فالو کرتے ہیں, ہم اس امام کو فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم بالکل ایک سیدھی سیدھی سی بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی نہ سمجھے, نہ کوئی برائی کر رہے ہیں نہ تنقید کا, ہم بتا رہے ہیں آپ کو, ایک بات بتا رہے ہیں کہ اختلاف ہونے کے باوجود ان میں کوئی جھگڑا ہے, کوئی جھگڑا نہیں. اور عرب ممالک میں جائیں گے تو ان میں فقہ جعفریہ میں بھی کوئی جھگڑا نہیں ان میں. یہ تو اب یہ 30-40 سال سے یہ زہر پھیلایا گیا نا, کوئی جھگڑا نہیں تھا, معلوم ہے کہ ہاں بھائی یہ فقہ جعفری کا ماننے والا, یہ فقہ والا, یہ فقہ والا, یہ فقہ والا, ایسا ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں, سب ہمارے بھائی ہیں, میں نے پہلے عرض کر دیا. اب جو اسلاف ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم غیر مقلد, جس کو کیا کہتے ہیں, ہاں اب آسان لفظ اخباری, کیا کہتے ہیں ان کو, اخباری یعنی غیر مقلد, کوئی جھگڑا نہیں تھا ان کا بھی, کوئی جھگڑا نہیں تھا. ہمارے یہاں بھی ایک گروہ تھا, اب جو ہے نا یہ بتا دوں, نہ وہ اخباری ہیں نہ وہ تخبیری ہیں, وہ کچھ بھی نہیں, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, ان کو اخباریت کا بھی نہیں معلوم ہے. مزے کی بات یہ ہے, لطف یہ, جب میری دو چار سے بات ہوئی تو اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا اخباریت کیسے کیسے, بات اخباریت کی کر رہا تھا اور دلیلیں مرجعیت کی لا رہا تھا. تو میں حیران ہو گیا, میں نے کہا بھائی تو اخباری ہے تو اخباری دلیلیں دے, تو یہ مرجعیت والی دلیلیں کیوں دے رہا ہے ہمیں, یہ تو وہ معلوم ہوا کہ اس کو وہ بھی نہیں پتا تھا کہ اخباریت کیا ہوتی ہے. تو خیر اب وہ اخباری تھی, وہ غیر مقلد ہے بھائی, ہے ٹھیک ہے, ہیں ان کا مسلک ہے, وہ اللہ فیصلہ کرنے والا ہے, لڑائی جھگڑا تھوڑی ہوتا تھا, فتوے تھوڑی لگتے تھے ایک دوسرے پہ, کافر تھوڑی قرار دیتے تھے, دین سے تھوڑی نکال دیتے تھے, دین سے باہر تھوڑی کر دیتے. جتنے مکاتب کے علماء مجھے سن رہے ہیں وہ میری بات کی گواہی دیں گے کہ ایسے ہی ہے, پڑھے لکھے جاہلوں کی ضمانت نہیں لے رہا میں, جاہل کہیں کا بھی ہو, ہمارا ہو یا کسی اور کا, اس کی بات میں نہیں کر رہا, میں عرض کر رہا ہوں پڑھے لکھے علماء سب جانتے کہ ایسے ہی تھا بھائی, ایسے ہی ہے, سب ساتھ رہ رہے تھے, ٹھیک ہے. میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ہمارے ائمہ کتنے ہیں, ائمہ طاہرین کی تعداد کتنی ہے بھائی, 12 ہے نا, یہ معصوم بچہ بول دیا. دیکھیے معصوم بچے کو بھی ہمارے یہاں معلوم ہے, جو بولنا سیکھ جاتا ہے نا تو اس کو ماں پہلے یہی سکھاتی ہے, اللہ ایک, پنجتن 5, امام معصوم 14, یہ طے شدہ بات ہے. پھر بھی لوگ ہم پہ پتہ نہیں کیا کیا الزام لگاتے ہیں. جب بولنا سیکھتا ہے تو ماں سب سے پہلے سکھاتی ہے کہ بیٹا اللہ ایک ہے اور کوئی نہیں, اللہ ایک مطلب توحید کا درس اس کو پہلے ہی دے دیا جاتا ہے کہ بس سب ایک طرف, اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں کرنا, یاد رکھیے گا, اللہ کی الوہیت میں کوئی شریک, وہ ولایت کے اختیارات ہیں جن پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں, الوہیت وہ ایک, انما الہکم واحد, بس تمہارا اللہ ایک ہے اور کوئی نہیں. جس نے دوئی کی مشرک ہو گیا, صاف بتا رہے ہیں آپ کو, لگا کوئی لگی لپٹی تو نہیں کر رہا ہوں, لپیٹ لپیٹ کے تو باتیں نہیں کر رہا, سیدھا سیدھا, جس نے کسی کو اللہ کی الوہیت میں شریک جانا مشرک, مشرک کی تعریف یہی ہے, مشرک کی تعریف یہی ہے کہ جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دے. صفات کی جب بات آئے گی تو بہت ساری ایسی صفات ہیں جن کا ظہور اللہ نے اپنے انبیاء میں کیا ہے. دیکھیے اب آسان کر رہے ہیں آپ کے لیے مطلب کو, بہت ساری صفات اللہ کی ایسی ہیں, اللہ نے جن صفات کا ظہور کس میں کیا ہے, اپنے بندوں میں کیا, اپنے پیغمبروں میں کیا, حتیٰ کہ عام بندے بھی اگر اس سطح پہ پہنچ گئے لقمان جیسے, لقمان نبی نہیں, پیغمبر نہیں, رسول نہیں, ولی نہیں, امام, خیر ولی کا تو ایک مقام ہوگا ان کا یقیناً, امام نہیں, کسی نبی کے وسیع نہیں, مگر اللہ نے ان کو منصب کیا دیا, کس صفت سے نوازا, حکمت کی صفت سے, لقمان حکیم, حکیم کس کی صفت ہے بھائی, اللہ کی صفت ہے, حکیم ہونا کس کی صفت ہے. تو یہ اس لیے ایک مثال دی چھوٹی سی, باقی بہت مثالیں, روح اللہ, کون ہے روح اللہ, جناب عیسیٰ علیہ السلام, تو ہے نا, تو بہت ساری صفات. بس اب اگر کسی ذات میں ظہور کر رہی ہے صفات, کمالات دے رہا ہے اللہ, کمالات آج یہی بتائیں گے آپ کو, کمالات عطا کر رہا ہے, اگر کوئی ہستی اللہ کے حکم سے अल्लाह की दी हुई विलायत के जरिए से किसी चीज को अदम से वजूद में ला रही है, तो ये शिर्क नहीं हुआ। ये क्या हुआ? ये बिल्कुल ऐसा हुआ। एक मिसाल देता हूं आपको, मुझे बताइए, जनाबे मूसा के मुकाबले में साहिरों ने रस्सियां फेंकी, सांप बन गए। सांप बन गए, अदम से वजूद में ले आए। अब क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे उनको भाई, जादूगरों को? कितना इल्म है उनके पास? आप कहते नहीं, ये कोई नहीं कर सकता, मौजिजा नहीं हो सकता। माजल्लाह, नबी के पास मौजिजा नहीं हो सकता, रसूल के पास। मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं, दर्जनों मिसालें कुरान मजीद में मौजूद है अंबिया के मौजिजात की, कमालात की। लेकिन बेज़निल्लाह, बेज़निल्लाह। लेकिन अब मुझे ये बताइए, जब अल्लाह की आवाज आई कि मत डरे मूसा और अपने आशा को फेंक दें, आशा को फेंक दिया, क्या बन गया? अजदहा बन गया, सारे सांपों को हड़प कर गया, खा गया। अच्छा ये बताइए, कुरान मजीद ने कहा ना ये तो, कि अल्लाह ने मूसा से कहा तखफ मत डरो मूसा, फेंक दो अपने आशा को। किसी ने ये आवाज सुनी वहां? किसी ने सुनी थी? किसी ने नहीं सुनी आवाज। लोगों ने तो ये देखा कि साहिरों ने रस्सियां फेंकी, मूसा ने आशा फेंका, तो वो तो इसको मूसा का मौजूदा कहेंगे ना, कि मूसा का मौजूदा है कि आशा को फेंका। बिल्कुल ऐसे जब आग गुलजार बन गई इब्राहिम के लिए, अल्लाह के हुक्म से बनी थी ना, या नारो कूनी बर्दम व सलाम अला इब्राहिम, इब्राहिम पे ठंडी हो जा, और ऐसी ठंडी हो जा कि ठंडक ना लगे, सर्दी ना लगे, सलामती वाली ठंडी हो जा। ये अल्लाह की आवाज नमरूद ने सुनी, नमरूदियों ने सुनी। लोगों ने तो यही देखा कि इधर इब्राहिम को आग में फेंका, आग गुलजार बन गई, तो लोग तो यही कहेंगे ना कि इब्राहिम का मौजूदा। तो जितने भी अंबिया हैं, सुन लो मेरे अजीजों, जहां तक आवाज जा रही है, हर एक ने कहा बेज़निल्लाह, बेज़निल्लाह, बेज़निल्लाह। लेकिन लोगों के सामने आया उस नबी के हाथ से, लिहाजा मना नहीं किया तकदीर ने, मना नहीं किया मशीयत ने, मना नहीं किया उस कातिबे तकदीर ने कि हां मेरे बंदे का ही मौजूदा कहो, जब वो खुद कह रहा है कि अपने बंदों को मौजूदा देकर भेज रहा हूं। मौजूदा लफ्ज, मौजूदे पे कोई अड़ जाएगा कि मौजूदे का लफ्ज कहां है कुरान में? क्यों? आयत का लफ्ज नहीं है, निशानी का लफ्ज नहीं है कि अपने बंदों को निशानियां देकर भेजो। निशानियां क्या है? वो निशानियां जो आम इंसान से सरजद नहीं हो सकती, आम इंसान अंजाम, आम इंसान अंजाम नहीं दे सकता। ये तमहीद में क्यों मान रहा हूं? वहां तक लाने के लिए कि जब अल्लाह का रसूल किसी की इमामत का ऐलान करे। कल यहां तक बात हुई थी, आज वजूब पर दलील देना है ना। किसी की इमामत का ऐलान करे, इख्तियार दे, दीन की बागडोर उसके हाथ में दे, और इख्तियार विलायत का ना दे, इख्तियार विलायत ना दे, यानी कुव्वत नाफिजा ना दे, तो फायदा? ये तो ऐसे ही हुआ कि साहिर तो इतनी विलायत रखते हो कि रस्सियों को सांप बना दें और जनाब मूसा के हाथ बंधे हुए, यानी भाई कहीं शिरक ना हो जाए। अरे खुदा के बंदू, कैसी बातें कर रहे हो? ये इख्तियार विलायत देता है परवरदिगार, यहां शिरक कैसा? अल्लाह ने अपने बंदों को ये विलायत दी है, खास बंदों को। तो बस जिसके सुपुर्द दीन का निजाम करके जाएगा अल्लाह का रसूल, उसके पास इख्तियार विलायत होगा कि नहीं होगा? होगा, जभी तो विलायत दी है, जभी तो इमामत दी है। अब वजूब कहां है कुरान में? वजूब कहां है? एक सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए, गुजर गए मुश्किल मरहले से, मैं गुजर गया। वो जो मुझे फाउंडेशन बनानी थी, वो फाउंडेशन डालनी, वो ने डाल दी, बुनियाद डाल दी। अब आइए सूरह निसा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और साहिबाने अम्र की इताअत करो। तमाम वो उली अम्र की तशरीह कुछ भी करें, लेकिन एक हुक्म सब जगह है, वो क्या है? वजूब, वजूब, वजूब। उली अम्र की इताअत वाजिब, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, उली अम्र की इताअत। उली अम्र की इताअत क्या है? वाजिब। मसला ये कि उली अम्र कौन है? उलिल अम्र की इताअत, आप देखिए सितम जरीफी तो देखिए, बाज़ लोगों ने उलील अम्र का माना क्या कर दिया, हाकिम वक्त, उसकी इताअत, हाकिम वक्त की इताअत वाजिब। अंग्रेज़ आया था ना, भरी पड़ी है तारीख फतवों से कि खबरदार अंग्रेज़ों के खिलाफ क़याम ना करना, क्यों, ये उलील अम्र है। देखा, ये साम्राज्य मुल्ला, साम्राज्य एजेंट इन्हें कहते हैं। आज भी यही बता रहे ना हमें, खबरदार इनके खिलाफ ना बोलना, ये हमारे माई बाप हैं, ये हमें भीख देते हैं। वो मैं नहीं कह रहा, ये खुद ही कह रहे, खुद ही कह रहे। अभी भी कशकोल लिए फिर रहे, भीख दे दो, भीख दे दो, भीख दे दो, भीख दे दो, है ना। अपना माल नहीं लाएंगे, जितनी ये भीख मांग रहे हैं ना, उससे 10 गुना 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा इन्हीं ने खुद लूट के बाहर जमा किया हुआ है। हाय पाकिस्तान के दर्द में सुबह शाम मरा जा रहा है, हाय कौम का दर्द, हाय पाकिस्तान का दर्द। तो लिया ना अपनी दौलत, लिया, ख़त्म कर लिया भाई, बैंक में रख दे खाली, बैंक में भी नहीं रख रहा कि कहीं जब्त ना हो जाए बाद में, बैंक भी स्विट्ज़रलैंड का, यहाँ नहीं रखेगा भाई, रख दे खाली तो मईशत बहाल हो जाएगी। सबको बेवकूफ़ समझते हैं 22 करोड़ लोगों को, लेकिन खैर छोड़िए, उलील अम्र की बात कर रहे हैं भाई हम, तो सीधी सीधी पता नहीं कहाँ चले गए। इन कमबख्तों के रहते नहीं दिमाग में, हर वक्त खलल ही रहता है इनकी वजह से। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। भाई क्या करें, जो गुजरती है दिल पे वो रकम करते रहेंगे, होता तो ये है ना, यही करेंगे, क्या किया जाए। खैर, हाकिम वक्त, अंग्रेज आ गया, अंग्रेजी साम्राज्य, बरतानवी साम्राज्य आ गया, का खबरदार कयाम ना करना, हाकिम वक्त। झांसी की रानी ने कयाम किया, बातिल करार दिया इन मुल्लाओं ने, टीपू सुल्तान के खिलाफ फतवा दिया इन मुल्लाओं ने, राजउद्दौला के साथ गद्दारी की इन मुल्लाओं ने, बेगम हजरत महल के साथ अवध की सल्तनत गद्दारी की इन मुल्लाओं ने, अंग्रेजों के हक में फतवे दिए अंग्रेजों के हक में, अगर कभी जिहाद भी किया तो अंग्रेजों के हक में किया, नहीं किया, भूल गए क्या इतनी जल्दी। सलावात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इसे इशारे तो समझ लिया करें, मजलिस ही मजमा है, मेरा जुमला तो ना जाया किया करें। एक सलावात और भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बोलिए अम्र, हाकिम वक्त, उलील अम्र। यहां भी ऐसे ही हुआ, अपनी पसंद का आ गया तो उलील अम्र। वो आया था ना ज़ियाउलक मलून, जिसका बोया हुआ पूरा पाकिस्तान काट रहा है आज, ये सब उसका बोया हुआ, याद रखे, हमेशा कहता हूं, उसको भी साले सवाब पहुंचाता रहता हूं, उसी की वजह से सब उसका किया धरा है, जो आज पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होने के करीब हो गया। अल्लाह हिफाजत करे, मेरे मुंह में खाक, क्योंकि मेरा, मेरी ज़मीन है, मेरा वतन है, मुझे कहीं नहीं जाना, ये मनहूस तो भाग जाएंगे, इनके लिए तो सारे रास्ते दुनिया के खुले हुए ना, मुझे यहीं मरना है, मुझे यहीं दफन होना है, मुझे कहीं नहीं जाना भाई, मुझे आपको कहीं नहीं जाना। इसलिए दुआ किया करो इस मुल्क की बका की हमेशा, परवरदिगार हमारे मुल्क को सलामत रखे, इन लुटेरों से हमारा पीछा छुड़ा दे, इन डाकुओं से हमारी जान छुड़ा दे, इन बेगैरतों से हमारी जान छुड़ा दे। अब और मैं क्या कहूँ इससे ज्यादा मिंबर पे। उलील अम्र, तो उसके लिए बड़ी बड़ी होर्डिंग लग गई कराची में, मैं नौजवान था भाई, मैंने सब देखा है, होर्डिंग पे लिखा हुआ है अतीउल्लाह अतीउ रसूल उलील अम्र मिनकुम, ए ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और हाकिम वक्त की, क्योंकि वो हाकिम वक्त इनका चहिता था। तो भाई अब भी तो कोई हाकिम वक्त होगा, आप क्यों मुखालिफत कर रहे हो, जब तुम्हें करनी ही है तो सबकी करो फिर, नहीं पसंद का हो तो ठीक, नहीं होगा तो धरना मारूंगा। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आई बात, तो भाई उलील अम्र है क्या, आज का मतलब आपके हवाले करते चले जाएं, क्या है ये उलील अम्र, तुम बताओगे या कुरान बताएगा, कौन बताएगा, तुम बताओगे या कुरान बताएगा जो कह रहा है उलील अम्र, क्या उलील अम्र है कौन, आइए देखें उलील अम्र कौन है। कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पे अम्र की तारीफ की गई है, किसकी तारीफ की गई है? अम्र की, खुद अम्र की। चलिए पहले और आसान करें, सूरह बनी इसराइल में ना, यसलुना कानी रूह बोली रूह मिन अम्रे रब्बी। ये आपसे सवाल करते हैं रूह के बारे में, इनसे कह दीजिए रूह तो अम्रे रब्बी में से है। अम्रे रब्बी नहीं, मिन अम्रे रब्बी, यानी अम्रे रब्बी बहुत वसी है, उसमें से एक अम्र क्या है? रूह। मिन अम्रे रब्बी बोली रूह मिन अम्रे रब्बी, रूह जो है वो अम्रे रब्बी में से एक अम्र है। आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ले अम्र। यह है शबे क़द्र, कहाँ की है, कब की है नहीं मालूम, लेकिन क़यामत तक मुसलमानों को हुक्म है कि शबे क़द्र की क़द्र करो। क्यों? इसमें मलाइका भी आते हैं, रूह भी आती है और हर अम्र को लेकर आती है ना। अभी नहीं मालूम अम्र क्या है, अम्र लाती। ये लफ्ज़ अम्र जहाँ भी अभी तक मैंने पढ़ा, ये अल्लाह के माने में तो नहीं है ना। अल्लाह के माने में कहाँ है, अल्लाह तो नहीं है अम्र। आई क्या है, एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद बेटा पानी। सूरह यासीन का हवाला दे देते हैं, बाकी और जगह भी है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो जाए। सूरह यासीन में अम्र की तारीफ, अम्र की, इन्नमा अम्रहु। अब समझ में आ गया इन्नमा, कितनी बार तशरीह कर चुके इन्नमा की, कलमाए हस्र यानी यही है, इसके सिवा और कुछ नहीं माना। इन्नमा अम्रहु क्या तर्जुमा है सिर्फ इस लफ्ज का? बस अल्लाह का अम्र यह है, अल्लाह अलग है, अम्र इजाफा है ना भाई है? जैसे आपकी गाड़ी, आप अलग, आपकी गाड़ी, ये का की के जो आता है ना उर्दू में, ये वो इजाफे के लिए आता है। वहाँ मुजाफ मुजाफ इलेह बन जाता है अरबी में, फारसी में भी और तरीके हैं जबानों में अलग अलग ग्रामर के हिसाब से, तो ये मुजाफ मुजाफ इलेह कहलाता है। एक जो इजाफा किया गया, एक जिसकी तरफ इजाफा किया जाए, तो अम्रुल्लाह काना अम्रुल्लाह मफ़ऊला, अल्लाह का अम्र होने वाला है, कायम होगा, हर सूरत में होगा, बरपा होगा। अम्रुल्लाह यानी अल्लाह का अम्र, अल्लाह अलग है, अम्र समझ में आ रही है बात। इन्नमा अम्रहु बस अल्लाह का अम्र यह है, इज़ा अरादा शयन जब वो किसी शय का इरादा कर ले, कहता है हो जा, हो गई। इज़ा अरादा शयन अन यकुला लहु कुन फयकून, जब वो किसी शय का इरादा कर ले, कहता है हो जा, हो गई। यह है अम्र, अम्र की तारीफ। यानी क्या है अम्र? इरादे रब्बी, रब नहीं, इरादे रब, इरादे रब का नाम है अम्र, अम्र, अम्र। अब वो शिर्क वाला मसला भी अभी खत्म हो गया जो मैंने शुरू में किया था ना, अब जो बात करूंगा ना तो सब क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जो भी सुनेंगे। अम्र की तारीफ मैंने अपनी तरफ से तो नहीं की ना, कुरान में है ना और पूरा पढ़ा, ये तो नहीं कि मैंने कोई छोड़ दिया आगे पीछे का इधर उधर का लेके बाप के सामने पेश कर दिया, नहीं ऐसा तो नहीं है ना। इन नमा के साथ, इन नमा अम्रहु इज़ारादा शयन अय्यकुला लहु कुन फयकुन, बस अल्लाह का अम्र ये है कि जब वो इरादा करता है किसी शय का, कहता है हो जा, हो गए। अम्र इरादे रब्बी, अम्र इरादे रब्बी। जल्दी से आपको एक रिवायत का खुलासा बता दें, कैसर रूम ने या रूम का जो भी बादशाह रहा होगा सवाल भेजा, शाम 10 ताकतवर चीजें कौन सी हैं दूसरे से ज्यादा, वहां किसको मालूम, एक आदमी को भेद बदल कर, भेद बदल के जा कूफे जा, जवाब लेकर आ, जवाब मिल गया तो अपने नाम से आगे बढ़ा देंगे, नहीं मिला तो सलूनी का दावा गलत है, दोनों में अपना फायदा, वही साम्राज्य चालें आज तक चली जा रही हैं, इच्छित भी अपनी और पट भी अपनी। उन्होंने कहा जनाब वो जाओ, वो आगे खुलासा कर रहे हैं, आया सवाल लिया, मौला ने पहचान भी लिया, बता भी दिया कहाँ से आया क्यों आया, चल बात, चल सवाल कर। उन्होंने कहा क्या हुजूर, मौला वो 10 कौन सी चीज़ें जो एक दूसरे से ताकतवर हैं ज़्यादा, 10 चीज़ें पूछी, 11 पूछता ना तो इमाम 11 भी बताते, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ कितनी थी, 10, उनकी पहुँच थी 10। मैं भी बता रहा हूँ मैंने ये जुमला क्यों कहा, वो यहीं तक जानते थे हर एक कैल में ना, जैसे जनाब मिकदाद के ईमान की 8 मंजिलें, जनाब अबू ज़र गफ़ारी सलामुल्लाह अलैह की 9 मंजिलें, जनाब सलमान फ़ारसी की 10 मंजिलें, है ना, मंजिलें हैं ईमान की। मोमिन की आखिरी मंजिल है 7। भूल जाऊँ याद दिला दीजिएगा, कल बता देंगे, वरना आप सोचते रहेंगे क्या मतलब है 7 मंजिल का, ये मतलब भी बता देंगे आपको। चलिए, तो अब इमाम ने कहा मेरे बच्चे बैठे हैं पूछ ले, ये नहीं कहा हसन से, हसन का नाम नहीं लिया, सब बैठे हैं, हसन हुसैन मोहम्मद हनफिया जनाब अब्बास सब बैठे, लेकिन हद अदब सब भाइयों ने हसन की तरफ इशारा किया, बड़े भाई है ना, हद अदब ये सीखो बच्चों, बड़े छोटों का अदब ख़त्म हो रहा है हमारे माशरे से, अफसोस के साथ मुझे माँ बाप से भी गिला है, माँ बाप भी अदब आदाब नहीं सिखा रहे, तू तकाड़ सिखा रहे, अब्बा भी तुम अम्मा भी तुम, अरे हमारे यहाँ तसव्वुर भी नहीं था कैसे मोहल्ले के किसी बड़े से तुम तो तुकार करके बात नहीं कर सकते, चाहे जाए के माँ बाप, चाहे जाए के बड़ा भाई, चाहे जाए के बड़ी हमशीरा हो, नहीं अदब आदाब आपको हाथ से ना जाने दीजिए, अपने बच्चों को संभालिए, खुदारा संभालिए, तहजीब की हिफाजत कीजिए। सबसे बड़ी जवाल की निशानी किसी भी कौम की होती है जब उसका कल्चर उसकी तहजीब ख़त्म हो जाए, तहजीब ख़त्म कौम ख़त्म, याद रखिएगा, याद रखिए ये उसूल है, तारीखी उसूल बता रहा हूँ आपको, जिसकी तहजीब ख़त्म वो कौम ख़त्म हो जाती है, बेशक ज़िंदा हों लेकिन कौम ख़त्म हो जाती है, मोरली ख़त्म हो जाती है, अखलाकी तौर पर ख़त्म हो जाती है। इंद्राम इमाम हसन खड़े हुए, क्या देख अल्लाह ने सबसे सख्त पत्थर को बनाया, पत्थर से, अच्छा अब मैं खुलासा करता हूँ क्योंकि आगे मतलब ये आप सुनते रहते हैं ना मजालिस में, फिर आप कहेंगे अब ये वही वाली बातें लेके बैठ गए पुरानी वाली, पत्थर लोहा आग पानी बादल हवा, फिर हवा को चलाने वाला मलक, फिर उस मलक के ऊपर मलकुल मौत, मलकुल मौत के ऊपर भी मौत, मलकुल मौत के ऊपर भी, और मौत के ऊपर अम्र रब्बी, 10वें नंबर पर क्या है, रब नहीं, रब नहीं, 10वीं सबसे बड़ी ताकतवर चीज क्या है, अम्र रब्बी, चला गया जवाब लेके, उसने 10 चीजें पूछी ना, 10 बता दी, अब मैं आपसे पूछता हूं इन 10 चीजों में इमाम कहां है, इमाम कहां है भाई, आखिरी दोस्तादी आखिरी मंजिल है अम्र रब्बी, बस 10वां है अम्र रब्बी, खत्म हो गई 10 ताकतें, तो इमाम कहां है, नबी कहां, रसूल कहां, पैगंबर कहां, वली कहां, वलीउल्लाह कहां, मौला कहां, कहां है सब, मैंने इसीलिए पहले जुमला कहा ना उसे पूछे ही 10 था, 10 बता दिए, चले जाओ अब ये अम्र रब्बी की तशरीह कुरान में समझ में आया, अम्र क्या है, अम्र रब्बी यानी इरादे रब्बी, याद रखिएगा खुदा के लिए इस मतलब को भूलिएगा नहीं, अम्र रब्बी यानी इरादे रब्बी, अभी शायद की तिलावत कीजिए, या अय्युहल लजीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, आम की नहीं और ज़ियाउल हक की नहीं, बनी अब्बास के किसी हाकिम की नहीं, बनी उमैया के किसी हाकिम की नहीं, साम्राज्य की नहीं, शैतानी ताकतों की नहीं, ए मोमिनो अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और उसकी इताअत करो जो साहिबाए अम्र है। या इतनी बुलंद आवाज से एक सलवात भी नाय फरमा दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, बात वाजी हो गई, आसान हो गया, मतलब उली लमर ऐसे परवरदिगार कहेगा इसकी इताअत कर ले, ये जो बैठे में लुच्चे लफंगे स्मगलर धाड़ियल, अब क्या करें, ये लफ्ज़ आम हो गया, हालांकि फसाहत से गिरा हुआ है मगर क्या किया जाए, आम जबान पे आ गया तो हमारी जबान पे भी आ गया, सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, इनकी इताअत करें, उलिल अम्र समझ में नहीं आ सकता जब तक अम्र नहीं समझोगे, लोगों ने अम्र समझने की कोशिश नहीं की, उलिल अम्र कहां से समझ में आता, और जिन्होंने समझ भी लिया छुपा लिया, मतलब को छोड़ो छोड़ो, क्योंकि और कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसा उलिल अम्र, बस उलिल अम्र ارادہ ربی اب شرک نہیں ہے، یہ وہ حق ہے، یہ وہ ارادہ ہے، پروردگار جتنا جتنا جس کو دے دے، کسی کو موسیٰ کو اتنا دیا، اس سے زیادہ عیسیٰ کو دے دیا ہوگا، کچھ سلیمان کو دیا، ارادہ ارادہ، پلک جھپکنے سے پہلے تخت لانے کا ارادہ، کس کو؟ سلیمان کو نہیں، ان کے وصی کو، تو سلیمان کے وصی میں اتنی طاقت ہو کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لیا ہے، جو سلیمان کا بھی آقا، 124,000 انبیاء کا آقا، پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عالمین کا آقا، جب اس کا وصی ہوگا تو اس کے اختیارات کہاں تک ہوں گے؟ ارے میں جناب سلیمان کے اختیارات تھوڑی بتا رہا، میں تو جناب سلیمان کے، بھائی وہ بچے نے نعرہ لگایا تھا، بیٹا پھر سے لگا دے ایک بار، مگر اب دوبارہ بیچ میں نہ ٹوکیو مجھے، لگا دے نعرہ ایک بار، چلو یا ہاں، نعرے مجھے بھی اچھے لگتے ہیں، موقع محل ہوتا ہے، ابھی معصوم بچے، ان کو تو بیچاروں کو نہیں معلوم نا، اس لیے میں دل نہیں توڑتا، چلو لگا رہا ہے بچہ نعرہ، لگانے دو، اچھا لگتا ہے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، سمجھ میں آ گئے؟ جناب سلیمان کے وصی، وہ تو نبی نہیں، پیغمبر نہیں، امام نہیں، لیکن اختیار کتنا، پلک جھپکنے سے پہلے آ جاؤ بھائی ادھر، لے آئے، حضور کا اختیار کہاں تک ہے؟ تو جو حضور کا وصی ہوگا، اب سمجھ میں آیا کیوں اختیارات حوالے کر کے جا رہا ہے اللہ کا رسول؟ اسی لیے تو حدیث نا، اور یہ یاد رکھیے گا، اب یہ جو حدیث پڑھ رہا ہوں یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ سب کیا ہے، وَمَن مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيًّا، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، جاہلیت کی موت مر گیا، تو کون ہوگا میرے وقت کا امام؟ کون ہوگا میرے وقت کا امام؟ کس کے ہونا چاہیے؟ اختیارات کے ساتھ یا بغیر اختیار کے ساتھ؟ اطاعت واجب ہوئی تو اختیارات کے ساتھ یا بغیر اختیار کے ساتھ؟ تو تلاش کرو کون ہے وہ امام، تو شب قدر پکار پکار کے کہے گی کہ ہر شب قدر میں امر نازل ہو رہا ہے کہ نہیں، تنزل الملائکہ تو والروح فیہا بیزن ربیم من کل امر، اب یہ امر کہیں بھی نازل ہو مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور ہے کہ امر کا نازل ہونا بتا رہا ہے کہ کوئی اولی الامر ہے، امر کا نزول ہی تو بتا رہا ہے کہ کوئی اولی الامر، کوئی اولی الامر ہے، بس یہیں تک رکھیں گے آج بات، کیونکہ زیادہ ابدار مجلسیں بڑھ رہی ہیں، آگے وقت بھی بڑھتا جا رہا ہے، میری گھڑی پہ نظر پڑ گئی ہے، یہی سے مطلب شروع کریں گے زندگی رہی، ٹھیک ہے، تمام اپنے برادران کے لیے، ہم تو پہلے ہی لحاظ کرتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ کسی کو برا نہ لگ جائے، ہمیں دوسروں کی بات بھی رکھنی ہوتی ہے اور اپنا نقطۂ نظر تو پیش کریں گے نا بھائی، یہ تو ہمارا حق ہے کہ نہیں ہے، یہ حق ہمیں سب نے دیا ہے، ہاں اس طرح سے پیش کیا جائے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی دل شکنی نہ ہو، ہے نا، نہیں اچھا بھی نہیں، ہمارے معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے دوستو، نہیں اچھا، میں آپ سب کو نصیحت کر رہا ہوں، کبھی نہیں، نہ دفتروں میں، نہ کالجوں میں، نہ اسکولوں میں، کبھی ایسی بات نہ کریں، دل شکنی نہ کریں، رواداری قائم کیجئے، ایک دوسرے سے محبت سے رہی، ہاں ان کا نقطۂ نظر سنیے، اپنا نقطۂ نظر پیش کیجئے، نقطۂ نظر گالیاں دے کے تھوڑی پیش کیا جاتا ہے، برا بھلا کہہ کے تھوڑی پیش کیا جاتا ہے، نقطۂ نظر پیش کرنے کا طریقہ تو بھی کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ ان کا بھی حق ہے، یہ ہمارا بھی حق ہے، اسی حق کو استعمال کرتے ہوئے تشیع یہاں تک پہنچا ہے نا آج، ہم نے کوئی دہشت گردی تھوڑی کی، نہ قیامت تک کریں گے انشاءاللہ، ہمارا ہے ہی نہیں، ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا، ہمارے ائمہ طاہرین ایک جملے پہ لا کے مصائب سے ربط دینا چاہتے ہیں، 12 امام، کتنے امام؟ راستے کتنے؟ فقہ کتنی؟ ایک، حکم کتنے ہیں؟ ایک، بھائی حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب 12 ہیں تو 12 الگ الگ فقہیں ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں میری بات کو، ایسا نہیں ہوا نا، بس کیوں، امامت کی ایک اور دلیل یہ ہے नबी नबी नहीं होता जब तक पहले वालों की तस्दीक ना करे। ऐसे ही है ना, नबी नबी अगर पहले वालों की माज़ल्ला तकजीब करे और झूठा है, नबी है ही नहीं, ऐसे हुए ना पता नहीं कितने पैदा हुए झूठे नबी। नबी रसूल पैगंबर की पहचान यह है कि अपने से पहले वालों की तस्दीक करेगा, तस्दीक करता हूँ कि वो सब अल्लाह के रसूल थे, नबी थे, पैगंबर थे, हर नबी यहाँ तक के खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम अंबिया की तस्दीक की और हमसे भी तस्दीक करने को कहा, ईमान का हिस्सा, ईमान का हिस्सा। हर नबी पर ईमान रखना है, नाम जानो या ना जानो, रखना सब पे ईमान है ना, ईमान का हिस्सा है सब पे तस्दीक करना। पहचान ये कि अपने पहले वालों की तस्दीक। बस हमारी यहाँ भी इमामत का उसूल क्या है, कहीं और इमामत बनती नहीं जब तक दूसरे के फतवे से इख्तिलाफ ना किया जाए। हैं, इख्तिलाफ करेंगे जब ही तो अपने बनेंगे ना भाई, वो इल्मी इख्तिलाफ की बात कर रहा हूँ, इल्मी इख्तिलाफ, फिक्ही इख्तिलाफ करते हैं ना, इसलिए अलग अलग इमाम। हमारे यहाँ उसूल क्या है, जब तक पहले वाले इमाम की तस्दीक ना करे तो ना मालूम कितने इमाम हमारे भी बने कि हमने माना, छठे इमाम के बाद कितने निकले, रास्ता बदल बदल के हमने माना, सातवें के बाद निकले हमने माना, आठवें के बाद भी निकले माना, नवें के बाद भी निकले माना, नहीं माना, क्यों, जब तक सबकी तस्दीक ना करे इमाम नहीं होता, हम नहीं मानते, इसलिए इसना शरिया कहलाए आप, इसलिए इसना शरिया। बस ये आए इताअत उलिल अम्र वाजिब है ना, अम्र का सीगा है, तमाम मकातिब में एक ही तफसीर है इस अम्र के, माना है ना वजूब पर दलालत करता है, अम्र वजूब पर दलालत करता है ना, अम्र का सीगा वजूब है, तो पहले तलाश कर लो उलिल अम्र कौन है। अगर साहिबान अम्र नजर आ जाए ऐसे कि जिनकी खातिर कभी सूरज को पलटा दिया जाए, कभी चांद के दो टुकड़े कर दिए जाएं, कभी सितारा सुकड़ के सिमट के किसी के सहने में उतर आए, वो हमारे यहाँ बड़े बड़े मोतरजीन पैदा हो गए हैं, ख़ास तौर पे इमामत के कमालात पे उनको बड़े शक व शुबात होते हैं, अपने वजूद पे शक होता नहीं तो शक करने चले इमामत पे, बड़े बड़े पैदा हो गए, वही भाई सितारा तो इतना बड़ा होता है, कोई इतना थोड़ी जो नज़र आ रहा है, कैसे उतर गया सहन में, खुदा के बंदे। पहली बात तो ये कि सितारे का कोई साइज होता नहीं है, तुझे कैसे पता कि सारे सितारे बड़े होते हैं, हमें क्या मालूम, इस कायनात में जिसमें खरबहा खरब, अभी जो एक नई कहकशां ईजाद हुई है जानते हैं, 50 करोड़ नूरी साल के फासले में, मौलवी कहता तो आप कभी भी नहीं मानते, साइंसदान कह रहा है तो मान लो, वो दूरबीने लगा लगा के देखा, उनका भाई ये तो एक आलम के बाद दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा भाई किसी इससे बड़ी, इस आलम से बड़ी कहकशां दरियाफ्त हुई है 50 करोड़ नूरी साल के फासले पे। ये 6-7 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ, 600-700 साल पुरानी बात नहीं बता रहा आपको, मालूम हुआ इतनी बड़ी कायनात, तो तुझे क्या पता, और फिर तुझे समझ में नहीं आ रहा इख्तियार विलायत क्या है, समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिस मशियत ने, जिस वो अला कुल शैइन कदीर ने इस कायनात को खलक किया, उसी के दिया हुआ इख्तियार है ना, है कि नहीं उसका दिया हुआ इख्तियार, जो सुलेमान के वजीर के लिए, वसी के लिए, जानशीन के लिए फासलों को, हजारों मील के फासलों को सुकेड़ सकता है एक लम्हे में, पलक झपकने से पहले इतने वक्त में हजारों मील का फासला सुकेड़ सकता है, अली के सहन में सितारे का सुकड़ के आना कौन सा मुश्किल काम हो जाएगा, कौन सा मुश्किल काम है। बुकरातियां झाड़ते हैं बैठकर, हमारे यहां भी बड़े बड़े बुकरात पैदा हो गए, अल्लाह उनको हिदायत दे, बुकरात कम और प्लांटेड बुकरात ज्यादा लगते हैं, सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, समझ में आ गई, मजाक उड़ाते भाई सितारा, इसको पता ही नहीं मौलवी हसन जफर को कुछ पता ही नहीं, सितारा कितना बड़ा था और सहन में कैसे आ गया, हमें तो इस पे ताज्जुब है, तू कैसे आ गया हमारे अंदर, पता नहीं कहाँ से घुस आया, घुस बैठिया, सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आ, 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 जो परवरदिगार इस्माइल, इस्माइल कौन? अबुल अइमा, एक तो मौलाए कायनात है ना, दूसरा कौन है? जनाब इस्माइल, जनाब इब्राहिम। इमामत यहीं गई है ना, जनाब इसहाक पर थोड़ी गई, वहां नबूवत गई बनी इसराइल के नबी 70,000 से ज्यादा। जनाब इस्माइल की नस्ल में कोई नबी नहीं है, एक नबी, आखिरी नबी, और इमामत का वादा था, इमामत वहीं दी, समझ गए? जनाब इस्माइल शीरखार, इस पे भी शक कर, इस पे भी शक कर अब जाके कि शीरखार कैसे हो सकता है, एड़ियां रगड़े चश्मा जारी हो, अल्लाह की कुदरत पे शक करता है। हम जब अली के अख्तियारात की बात करते तो ये कैद लगा रहे कि नहीं लगा रहे कि विलायत किसने दी अली को? अल्लाह ने। तो उसकी विलायत के अख्तियारात में शक करना अल्लाह की कुदरत में शक करना है। समझ में आ रही है बात? कैसे हो सकता है कि इब्राहिम बच्चे को जिबा कर रहे हैं, दुम्बा आ गया, कर दे इनकार, और क्या पता कुरान में नहीं होता तो इसका भी इनकार कर बैठता, लेकिन शुक्र है कि कुरान में आ गए ये मुजज़ात सारे। नहीं, समझ गए? ये बस यही हुसैन, अगर अली असगर को सहरा में लिटा दे और सिर्फ एक जुमला कह दे, ए यादगार इस्माइल जरा एड़ियां तो रगड़, कोई बईद नहीं कि करबला में भी चश्मा जारी हो जाता। और ऐसी रिवायात हैं असर आशूर के वक्त के, जब हुसैन ने ठोकर मारी थी और चश्मा जारी हो गया जनाब सकीना के लिए। लेकिन अभी तो हमें जिक्र करना है उस करबला के नन्हे मुजाहिद का जिसकी माँ रात भर रोती रही। क्यों रोती रही? कि काश मेरा बच्चा इतना बड़ा होता कि तलवार उठा लेता, इसीलिए तो रो रही थी जनाब उमर बाप। इस सुबह सब अपनी अपनी कुर्बानियाँ पेश करेंगे, मुझ दुखियारी के पास एक 4 साल की बच्ची है सकीना और एक ये शीरखार गहवारे में, क्या पेश करूँगी? मशियत को इतनी पसंद आई ये दुआ, ये ग्रिया, ये तमन्ना जनाब उमर बाप की, कि तय कर लिया मशियत ने कि फातह करबला भी तेरा मुजाहिद अली असगर होगा और फातह शाम भी तेरी बच्ची सकीना। ऐसे ही है ना, जनाब अब्बास हैं फातह फुरात और अली असगर कौन है? फातह जंगे करबला, फातह जंगे करबला। कोई बईद नहीं, जब शब आशूर में माँ झूले को पेंग दे देकर रो रही हो तो बच्चा हुमक हुमक कर समझाने की कोशिश करता हो, मादरे गिरामी इत्मीनान रखो, रोती क्यों हो? ज़रा सरे आशूर तो आने दो, फिर देखो तुम्हारा अली असगर करता क्या है। और कितना खुश था अली असगर जब उसका बाबा अबा के दामन में छुपा के उसको खेमे से बाहर लाया था। अबा का दामन जानते हैं क्यों कर दिया, साया क्यों कर दिया था? झुलसती धूप, लू चलती हुई, और कितने पहरों का प्यासा रुबाब का ये कुमलाया हुआ फूल। चंद माह का बच्चा, जानते हैं क्या हालत थी? जब हाथों पे उठा के दिखाया था ना लश्कर को, बच्चे को हाथों पे उठा के और रुख कर दिया था लश्कर की तरफ, तो मकातिल में लिखा है, मैं मुबालिगा नहीं कर रहा, कि मछली को जब साहिल पर फेंक दिया जाए तड़पते 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 आखिर में कहते हैं कि जा बलब, क्या मतलब? अब उसमें हिलने की सकत नहीं होती, उसके लब फड़फड़ा रहे होते। ये मंजर लिखा है अली असगर की प्यास का, कि बच्चे के लब ऐसे फड़फड़ा रहे थे जैसे मछली दम निकलते वक्त उसके लब होंठ फड़फड़ा रहे, प्यास। किसी को रहम ना आया, बच्चे को लिटा दिया, आओ आगे बढ़ो, तुम में से कोई पिला दो, मैं पीछे हट जाता हूँ। कोई नहीं आगे बढ़ा, अब गोद में उठाया और कहा, बेटा तू भी तो हुज्जत खुदा का फर्जंद है, हुज्जत तमाम कर दे। और यूं कहूँ कि अब अली असगर ने इज़्ने विगा तलब किया, बाबा मुझे भी तो हमला करने की इजाज़त दो। अपने अल्फाज में मैं कह रहा हूँ, कैसा है जैसे अली असगर कह रहा हो बाबा इजाजत हो, इजाजत मिली, अली असगर ने हमला किया। कैसा हमला था? लश्कर ने तलवारें फेंकी, हथियार फेंके, मुंह फेर फेर कर रोने लगे थे। क्या किया था इस मासूम बच्चे ने? इस मासूम बच्चे ने बस इतना किया था कि खुश्क होंठों की कमान में रख के सूखी जबान की तीर से सूखी जबान का तीर चलाया था। सिर्फ जबान फिराई थी, नन्ही सी जबान उन होंठों पर, यह मंजर नहीं देखा गया उनसे। कितने लोग पहुंच गए पिसरे साथ के सर पे पानी पिलाने की इजाजत, वरना भी आपस में तलवार चलती। घबरा गया, उर्मिला को आवाज दी, उर्मिला इक्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन की गर्दन का निशाना लिया था उर्मिला ने, लेकिन अभी हुसैन का आखिरी मुजाहिद अली असगर जिंदा था। अली असगर ने नजरें जमा दी तीर की तरफ, जो ही तीर चला अली असगर तैयार हुआ। जैसे ही बाबा के करीब आया अली असगर ने हुमक के अपनी गर्दन को सामने कर दिया। पहले तीर ने अली असगर की गर्दन को छेदा, बाद में हुसैन के बाजू में पेवस्त हुआ। ये अली असगर की गर्दन का कमाल था कि तीर को अपनी गर्दन पे लेकर उसके जाविये को मोड़ दिया था। लेकिन अदादारो इंसाफ से काम लो, 6-7 माह का बच्चा हो, कई पहरों का प्यासा हो, और आहनी तीर, तीर भी कैसा तीर, ऐसे शोभा, तीर ऐसे शोभा, बच्चों को समझा रहा हूं, यानी तीन फल थे, तीन मुंह का तीर था। मुझे बताओ चंद माह के बच्चे की गर्दन पे जब तीर लगा, खंजर से ज्यादा काम किया था, पूरी गर्दन तकरीबन कट गई थी उस तीर के वार से। गर्दन ढलक गई, ढलक गई गर्दन दाएं हाथ की तरफ हुसैन की आगोश में। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, तीर की क्या मजाल थी कि अली असगर का मन का ढलक जाता, उसकी गर्दन ढलक जाती। नहीं नहीं, ये तो तीर खाने के बाद अली असगर ने करवट ली थी, खेमे की तरफ देखा था मुस्कुरा के, खेमे के दर पे खड़ी माँ अपने बच्चे की जंग देख रही थी। अली असगर की ये वो अबदी मुस्कुराहट, जैसे कह रहा हो माँ अब तो खुश है, अब तो खुश है, देख मैंने अपने बाबा का दिफा कैसे किया है, सुनो हर एक का लाशा हुसैन लेकर आए। लेकिन ये किस मुजाहिद का लाशा है कि हुसैन की हिम्मत नहीं खेमे में ले जाएं। बार बार जाते थे, पलट आते थे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिजन बे कजाही व तस्लीमन ले अम्र। बड़ी मुश्किल से खेमों से रुखसत किया, पुश्ते खेमा पे आए, मौला आपने किसी की कब्र नहीं बनाई, ये असगर की कब्र क्यों आते हैं? शायद यही जवाब आएगा, अरे असरे आशूर के बाद तमाम शोहदा के सर काटे जाएंगे, नहीं चाहता मेरे मासूम अली असगर का गला भी काटा जाए। तलवार से नन्ही सी कब्र बनाई, असगर को सुपुर्द लहद किया, कब्र का निशान मिटा दिया। सुनो क्या हुआ, असरे आशूर के बाद शोहदा के गले काटे गए, शुमार किए गए। किसी ने कहा हमने जितने मैदान में मारे थे एक कम है, फिर ढूंढा गया नहीं मिला। किसी ने कहा पुश्ते खेमा पे आखिरी वक्त में हुसैन को छुपा रहा था, घोड़ों की नाल बंदी की गई, एक रिसाला तैयार हुआ नैजे बरदारों का, हुक्म हुआ कि पुश्ते खेमा की जमीन को खोदते रहो जब तक कुछ ना कुछ निकल ना आए। मां के कानों में यह आवाज आई, पुश्ते खेमा पे आ गई, अंदर से खेमे के अंदर से दुरूने खेमा से एक झुर्री से देख रही है कि घोड़े दौड़ रहे हैं, नैजों से जमीन खोदते जाते हैं, फरियाद कर रही है परवरदिगार मेरे अली असगर की खैर हो, मेरे अली असगर की खैर हो। लेकिन नहीं, अली असगर की तमन्ना तो कुछ और है। अली असगर तो ये कह रहा होगा ए मादरे गिरामी, ये दुआ ना करो, ये दुआ ना करो, तेरे अली असगर को गवाह
हारा नहीं कि सब शोहदा के सर तो नेजों पर हो और जो फातह जंग करबला हो उसका सर नेजे पे ना हो। बस अली असगर की तमन्ना पूरी हुई, एक मलून का नेजा जमीन में गया। अब जो वापस आया नौ के सिना पे उम्मे रुबाब का कलेजा अली असगर।